अब सवाल पैदा होता है कि नफ्स का मुहासबा कौन करे, खुद करना है या दूसरों से कराना है, या ये गुजार से होने वाली भी चीज़ है, तो इसको भी देखिएगा। मुहासबा नफ्स किसी एक जमात के साथ खास नहीं है, तमाम मोमिन छोटे बड़े मर्द औरत नेक बस सब है शामिल है, खुद कर। ये नहीं मतलब इससे कोई खास ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, कोई लीडर्स होंगे सोसाइटी में जो आपका मुहासबा करेंगे, आप खुद अपना करेंगे। जाहिल इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करे, क्योंकि अगर वो जाहिल है तो अल्लाह की इबादत किस तरह करेगा, जहालत कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, इल्म कैसे हासिल करेगा और सीखने की इब्तिदा कहाँ से करेगा। चलें जाहिल ने तो कर लिया, आलिम क्या करे। साहिब इल्म अपने नफ्स का मुहासबा करे। कहा जाता है कि इंतहा यानी आखिर में मुहासबा करना इब्तिदा में मुहासबा करने से ज़्यादा लाजमी है। क्यों भला? शुरू में अक्सर नीयत ठीक होती है, आखिर में बिगड़ जाती है। हिफ्स करेंगे ना आप, जब कभी अल्लाह आपको दे मौका, शुरू में बहुत जल्दी याद होगा, जूं ही ज्यादा याद करते जाएंगे ना तो गलती लगती जाएगी, क्योंकि पिछली आयतें भी याद आती हैं ना। तो और मैं देखती हूँ जो नया जोश होता है ना नए कोर्स के शुरू में, फिर बीच में कई फेजेस आते हैं, बाद में तो सिर्फ बात दफ़ा इंसान एंड करने का ही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है। तो लिहाजा अपने नफ्स का मुहासबा करना है अच्छे तरीके से। कई लोग हैं जिन्होंने मुहासबे के जरिए अपने नफ्स की इसलाह कर ली, फिर नेकियों का हुक्म दिया, बुराइयों से रोका। तो लिहाजा देखना, ये कहते हैं कितने तालिब इल्मों को देखा जो अपने नफ्स को नहीं बचाते और इसका मुहासबा नहीं करते, फिर कितनी ही जगह और मौके पर फिसल गए और सीधे रास्ते से भटक गए और अपने आप को बुरी आदत से नहीं बचाते, ना मकरूहात से बचाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो हराम चीज़ें भी कर लेते हैं। अल्लाह ना करे हम में से कोई एक ऐसा हो। चलिए 3 सेकंड आप खुद से पूछिए, कुरान की तालिबा हो ना, कहीं हराम में तो नहीं पड़ी भी। ऐसे लोग फिर नफ्स का मुहासबा नहीं करते, वो इल्म पर फख्र करते हैं, दूसरों पर तकब्बुर करते हैं, हसद बुखस चिगली हीबत में मुबतला है, इससे भी बुरे अमल होते हैं और खुद को दूसरों से आला समझते हैं। तो ऐसे लोगों को इनका इल्म कोई फायदा नहीं देगा। कहते हैं ऐसे शख्स का इल्म कैसे जैसे मुजाहिद का असलहा उसके साथ है, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो फायदा क्या होगा। या जो भूखे की जखीरा की हुई खुराक का रिश्ता है, भूखा खाएगा नहीं तो उससे फायदा कैसे लेगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम इस इल्म को अमल में ढालें। और ये बड़ी मारूफ शेर है अरबी का कि युखाविलु नलुल मजदी व सैफु मुगमदु, वो बुलंदी हासिल करने की कोशिश में है जबकि इसकी तलवार म्यान में है। यानी बंद तलवार से कैसे बुलंदी हासिल होगी, तलवार को म्यान से निकालना पड़ेगा। वो बुलंदी और आला मर्तबा पाने की उम्मीद रखता है जबकि इसकी कैफियत नींद की सी है। वया फलो दराकल ओला वहुआ नायमुन, तो सोने से बुलंदियां नहीं मिलती। ऐसे तालिब इल्म से तो बाज जाहिल बेहतर है, क्योंकि बाज आम लोग भी अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं और नफ्स की ख्वाहिशात से बचाते हैं। वो गलतियां जिनका आम तालिब इल्म इर्तकाब करते हैं, जिन पर मुहासबा नफ्स जरूरी है, वो गलतियां इल्म की तबलीग और तदरीस ना करना है। तो बहरहाल दीनदारों का मुहासबा आम लोगों से सख्त होगा, ये सब कुछ ज़रूरी है। और उलमा तो आम लोगों से भी ज़्यादा हकदार हैं कि मुहासबा नफ्स का अहतमाम करें। ये कहते हैं कि दूसरों के मुहासबे की वीडियोस बनाना और इस तरह की वेबसाइट्स बनाकर करना ये दुरुस्त नहीं है। आप अपने नफ्स का मुहासबा खुद करें, किसी और की बात है तो उसको अच्छे तरीके से बताएं, ना कि उसको पब्लिकली बदनाम करें। फिर नेक आमाल पर मुहासबा भी होगा। कैसे होता है? दो तरह से। नेक आमाल पर मुहासबा नफ्स कैसे होगा? अमल से पहले मुहासबा नफ्स, यानी आप नेकी करने लगे तो चेक कीजिए इरादा नीयत ख्याल, क्यों कर रही हो, अल्लाह के लिए है कि नहीं, ठीक है तो करना शुरू कर दें, वरना उस काम को वहीं छोड़ दें। इमाम हुसैन कहते हैं अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जो अपने इरादे पर गौर करता है, अगर वो काम अल्लाह के लिए हो तो जारी रखता है और गैर के लिए हो तो छोड़ देता है। तो रिया के डर से अमाल छोड़ने तो नहीं है, रिया को निकालना है इंशाअल्लाह ताला। तो काम करने से पहले अपना मुहासबा करना इखलास पाने के लिए और नियत की इसलाह के लिए, वरना क्या होगा। सूरत गाशिया आयत 3-4, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, मेहनत करने वाले थक जाने वाले आँख में दाखिल होने वाले, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने फ़ायदा ना किया। फिर इसी तरह मुहासबा नफ्स की ये किस्म नफ्स को शिर्क अकबर असगर और शिर्क खफी से बचाने के लिए इंशाल्लाह मददगार होगी। दूसरा मुहासबा के अमल करने के बाद। इसको तीन हिस्सों में आप बांट लें, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। पहला क्या है, अल्लाह के हक में कमी या कोताही पर मुहासबा नफ्स, यानी शुरू में किया तो अल्लाह के लिए था, बस अब ये चेक कीजिए कि अल्लाह का हक पूरा दे दिया या कम तो नहीं दिया, ज़्यादा तो नहीं किया, कोई सुन्नत छोड़ी तो नहीं, तरीका ठीक था। मसलन नमाज को ले लेना, खुशू खुजू था, वक्त पे पढ़ी, अल्लाह के नबी के तरीके पे पढ़ी, और इताअत के कामों में अल्लाह का हक छः बातों में, ये कलमे से लेकर ना सारी इबादत में आता है। नंबर एक, अमल में इखलास होगा तो कबूल होगी इबादत, फिर अमल में खैर ख्वाही हो अल्लाह के लिए। तीसरी चीज़ लाजमी है, इत्तबाए रसूल। चौथी चीज़, इस अमल को अच्छे तरीके से अंजाम देना, ये नहीं कि चलता चलता टरखा दो किसी काम को, नहीं। पांचवी, अल्लाह के एहसान और उसकी तौफीक और मदद की गवाही दी जाए कि जिसकी वजह से नेक अमल आसान हो, जिसको आप कहते हैं ना बमा तौफीक ही इल्ला बिल्ला, या ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। और छठी और आखिरी चीज़ जो इस वक्त हमारे इस टॉपिक से, नेक अमल के बाद इसमें कमी कोताही का एतराफ। हम क्या कहते हैं नमाज के बाद, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो क्या पता चला, अमल के बाद जो मुहासबा, उसमें पहली चीज़ है ये चेक कीजिए कि अल्लाह के हक में कमी तो नहीं की। दूसरा के ऐसे अमल पर मुहासबा जिसका छोड़ना इसके करने से बेहतर था। मसलन मोमिन के लिए ये पसंदीदा नहीं कि कम फ़ायदे वाले काम में पड़ा रहे और ज़्यादा फ़ायदे के काम को छोड़ दे। मसलन क़ियामुल्लैल, काम अच्छा है ना, लेकिन इसमें पड़े तो इससे अफजल काम फजर सुबह की चली गई। ऐसे अस्कार में मसरूफ़ रहे कि उससे ज़्यादा मसनून अस्कार मौजूद थे। हज़रत जुवेरिया, जब अल्लाह के नबी ने उनको देखा कि जब नमाज के लिए गए तो बैठी हुई थी, जब आए तो वहीं बैठी हुई थी, आपने कहा जब से मैं नहीं आया तुम इधर ही हो? कहा इधर ही हूँ। कहा तुम्हें चार कलिमात सिखाता हूँ जिनको तीन तीन बार पढ़ लो, सुबहानल्लाही व बिहम्दी ही अदद खल्की ही व रिदा नफ्सी ही व ज़ीनत अर्शी ही व मिदाद कलिमाती ही। अल्लाह की तस्बीह बयान करता हूँ इसकी हम्द के साथ, इसकी मखलूक के शुमार के बराबर और इसकी रजामंदी के बराबर, इसके अर्श के तोल के बराबर और इसके कलिमात की स्याही के बराबर। तो आपने कहा कि ये तुम्हारे लिए उससे बेहतर है। तो क्या पता चला कि एक इंसान ज़्यादा नेकी वाला अमल करे। मैं तो ख़ुद जब अब फजर के बाद सबसे पहले ये पढ़ लेती हूँ कि ये ना छूट जाए, क्योंकि कभी किसी के कहने पे भी तो उठना पड़ जाता है ना। इसकी शर्त पता क्या है, उठना नहीं है। फजर की नमाज जब पढ़ते हैं ना, फ़र्ज़ पढ़े फिर सुन्नत पढ़े, अब आप उसके ज़ाहिर अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहु अकबर फिर सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शुरू के पढ़े, फ़ौरन इसको पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आपको चार्ज तक वहाँ बैठने का अजर मिलेगा। तो फिर जाके सो जाए कि चलो अजर तो मिल ही ना शुरू हो गया ना। फिर इसी तरह तीसरी इसकी किस्म क्या है, अमल के बाद मुहासबे की, आदि और मुबाह उमूर में नीयत के फौत होने पर मुहासबे नफ्स। ये कौन से काम होते हैं जो आदत हो, जायज़ काम, खाना पीना नहाना धोना सफाई सुथराई। अब ये काम आम है लेकिन नेक अमाल में इसको बदल सकते हैं। कब? जब नीयत नेक हो, तो बंदा इस चीज़ का मुहासबा करता रहे कि मैंने खाना पीना जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या इसको नेकी की नीयत से किया। हज़रत साद बिन वकास से रिवायत है अल्लाह के नबी की, बेशक तू जो खर्च करे इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा के हसूल की हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि तू जो लुकमा अपनी बीवी के मुँह में डाले। सुभान अल्लाह, इससे भी ज़्यादा आसान दीन होगा कोई? अब हर काम के करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं ना, तो छोटा सा टॉपिक है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मददगार साबित होती हैं मुहासबा करने में हमारी, कैसे मुहासबा करना आसान है। तो सबसे पहले अल्लाह की मार्फत, क्योंकि अल्लाह भी तो मुहासिब है ना। तो जब अल्लाह ताला की सिफत पे गौर करेंगे ना कि उससे कुछ छुप नहीं सकता, तो आप ख़ुद भी अपना मुहासबा कर लेंगे। सूरह काफ 16 पे गौर कर लीजिए, वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विस बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो जब अल्लाह ताला को रगे जान के करीब महसूस करेंगे तो मुहासबा आसान होगा। इसी तरह सूरह बकरा 235, वालम अल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू। और जान लो कि अल्लाह ताला बेशक जानता है जो तुम्हारे दिलों में, बस उससे डरो। और मुझे कब याद आती हैं ये आयतें, जब स्कैनर्स में से आपका सामान गुजरता है, आप देखते हैं ना एक मशीन के अंदर से गुजारते हैं तो उनके पास स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे आपके अंदर बैग की एक एक तार भी उनको दिखती है, इतना वो गुंजले पड़ा हुआ दिखता है। आमतौर पे बैग ठीक होता है लेकिन पॉकेट्स में जो चीज़ें हैं वो सब स्क्रीन में दिखती हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ ना, तो वो लेडी कभी हो तो मैं भी उनके साथ देखती हूँ ना, तो मैं उनको कहती हूँ आपको कैसे पता चलता है, तो वो स्क्रीन दिखा देती है। तो मेरे पास एक ऐसे ये माइक होल्डर इधर होता था, तो वो मोटा सा गोल है ना, तो बहुत ज़्यादा जब बहुत सॉलिड कोई चीज़ होती है ना, तो वो उनको शक होता है कि ये पता नहीं क्या। तो वो हमेशा जो था ना मेरा ये जो अपना बैग बुक्स का ये रुकता था, तो वो उनको तो अब मुझे पता चल गया हुआ था, अब तो खैर हम वैसे उसको बाहर निकाल देते थे, लेकिन उसकी वजह से। और एक ये माइक मेरा बहुत दिखता है उनको ना, तो फिर वो कभी पूछे तो ऐसी एक जगह थे तो ये खोला तो व्हाट इज दिस, मैंने कहा इस माइक माइक यू आर सिंगर, मैं आई एम नॉट सिंगर आई एम टीचर। बहुत चीजें होती हैं, तारे वायर्स हैं। तो मैं उस वक्त इस साइटों को सोचती हूँ कि इनका इतना सा स्कैनर है तो इसमें दिख गया, तो बाकियों का क्या हाल होगा। तो अल्लाह की जात का ये सोचना कि वो हर चीज को देखता है, मुहासबे को आसान कर देगा। इमाम सालवी कहते हैं बंदे का अपने नफ्स के ऐबों को जानना और अल्लाह के जलाल और इसकी बड़ाई और बेनियाजी को जानने से, इस बात की मार्फत से कि अल्लाह जो भी करे इससे कोई पूछने वाला नहीं, इसके खौफ में तकवियत पैदा होगी, फिर तमाम लोगों से बढ़कर वो अल्लाह से डरने वाला होगा। सच है ना, पुलिस मैन से नहीं अल्लाह से डरेंगे आप, अपने नफ्स की और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करेगा। फिर जब इसको मुकम्मल मार्फत हासिल हो जाएगी तो अल्लाह का खौफ पैदा होगा और दिल जलने लगेगा, फिर इस जलने का असर दिल से बदन पर मुंतकिल होगा, ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी और खौफ की आग से जल जाएंगी, दिल में मिस्कीनी आजजी मस्कनत और नरमी पैदा हो जाएगी, इसका इरादा और प्लान मुकम्मल तौर पर खौफ पर मुहित होगा और अपने इंजाम पर गौर करने लग जाएगा, फिर वो अपने नफ्स का मुहासबा करेगा और हर वक्त कोशिश में लगा रहेगा और अपने इरादों अपने आमाल अकवाल में नफ्स का मुआखजा करेगा। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, कैसे दिल में से अल्लाह की बड़ाई निकलती है, फिर वो सारे जिस्म को जलाती है, उससे ख्वाहिशात भी जल जाती हैं। फिर दूसरी चीज जो आपको मुहासबे में मददगार साबित होगी, इस बात की मार्फत के मुहासबे नफ्स कल उसे राहत पहुंचाएगी। सच्ची बात है ना, जैसे घर से आप खुद अपना सामान ठीक तरह पैक करके ले जाएं तो एयरपोर्ट पे नहीं खुलेगा, ओवरवेट नहीं होगा, कोई नेल कटर भी नहीं होगा, कोई छुपी हुई चीज़ भी नहीं निकलेगी, तो कभी ऐसी कोई चीज़ निकले तो गुस्सा कितना आपको आएगा। इसी तरह पता नहीं हमारे कितने नेल कटर छुपे हुए हैं हमारे ऐसे अमाल नामों में, हराम है, कोई मकरूह है, कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स है, तो दुनिया में इनको छांट छांट के निकाल दीजिए। इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं मुहासबे नफ्स में ये चीज़ भी मुआविन है कि बंदे को इस बात का इल्म हो कि आज की कोशिश कल हिसाब के दिन इसे फायदा देगी, और अगर आज वो सुस्ती का शिकार होता है तो कल इसका हिसाब सख्त होगा। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। फिर अगली चीज़, इन सवालों पे गौर व फिक्र जो रोज़े क़यामत पूछे जाएंगे। किस किस को पता है क़यामत के सवाल? पांच सवाल हैं, कब्र के तीन हैं, मन रब्बू का, मा दीनू का, मर रसूलू का, और क़यामत के पांच सवाल, ला तज़ूल क़दम अन इब्ने आदम इन इंदी रब्बी हत्ता युसअल अन्हु खमसा। पहला सवाल, अन उम्री ही फ़ी मा फनाहू, उम्र कहाँ फना की, अन शबाबी ही फ़ी मा बलाहू, जवानी कहाँ पुरानी की, अन माल मिन ऐन इक्तसबहु, माल कहाँ से कमाया, व मिन ऐन अन्फ़क़हू, कहाँ खर्च किया, और पाँचवा, माज़ा अमिला बिमा अल्लमा, उस पे अमल कितना किया जो तुमने इल्म हासिल किया। तो इन सवालों पे गौर करते जाए, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, सुस्ती छोड़ें, ख्वाहिशात छोड़ें, हक की पैरवी करें, फ़राइज़ को लाजिम पकड़ें, हराम को छोड़ दें, मुस्तहबात को कसरत से अंजाम दें, मकरूह और शुबे वाली चीज़ों से दूर रहें, तो इंशाल्लाह इंसान मुतमईन होगा। ख़ास तौर पर तीन अज़ा का सवाल बहुत सख्त है, इन्ना सम्म वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बनी इसराइल 36, बेशक कान और आंख और दिल इनमें से हर एक के मुतल्लिक सवाल होगा। फिर इसी तरह अपनी नेमतों पे गौर करें, सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमा इज़िन अनिल नईम, तकासुर 8, फिर तुमसे ज़रूर नेमतों का सवाल होगा। सूरत अल-अहज़ाब 8, लियसअलस सादिकीन अन सिदकिहिम, ताकि वो सच्चों से इनके सच के बारे में सवाल करें। और मुजाहिद कहते हैं सादिकीन से मुराद रसूल है, क्योंकि उन्होंने पैगाम दिया था ना। इमाम सादी कहते हैं अन करीब अल्लाह ताला अंबिया और उनके पैरोकारों से पुख्ता अहद के बारे में सवाल करेगा कि उन्होंने वो वादा पूरा किया और सच कर दिखाया तो इन्हें जन्नत की नेमतें अता की जाएंगी, जो उन्होंने इस वादे को झुठलाया तो इन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे। सूरत अल-आराफ 6 में आता है, फलनस्सलनल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्सलनल मुरसलीन, तो यकीनन हम इन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو ذرا سوچئے, رسولوں اور سچے لوگوں سے پوچھا جائے گا تو میرے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ایک اور چیز جو محاسبے میں مددگار ہے, انعام کی معرفت, کہ آج محاسبہ کریں گے تو کل انعام کیا ملے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں اسی طرح محاسبہ نفس میں یہ چیز بھی مددگار ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اس تجارت کا نفع جنت الفردوس کی رہائش اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے, اور اس تجارت کا خسارہ جہنم میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. جب اس بات کا یقین ہو جائے گا تو محاسبہ کرنا آسان ہو جائے گا. دعا کر لیجیے, اللہ محاسبنی حسابی یسیرا. پھر اس سے ایک اور چیز مددگار ہے, قیامت کے دن کو یاد کر لیں. اس دن تو ایک بگ گیٹ ٹوگیدر ہے نا حساب کا, اسی کو سامنے رکھیں گے تو دنیا میں آسان ہوگا. عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارتاد کو خط لکھا, اے عدی, اللہ سے ڈرو اور یوم قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو, اور اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے, مخلوقات گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گی, ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں. اللہ اکبر, ہم کہاں ہوں گے اس وقت؟ اپنے آپ کو پوچھے. پھر آخری چیز جو مددگار کے طور پہ ادھر آتی ہے وہ کیا ہے؟ موت کی یاد. معروف کرہی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آپ سے فرمایا ظہر ہمارے ساتھ پڑھو. اس نے کہا اگر میں نے ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی تو اسر آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا. معروف فرماتے ہیں گویا تو یہ امید رکھتا ہے کہ تو اسر تک زندہ رہے گا. ہم اتنی لمبی امید سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. آپ کو امید ہے اسر تک جینے کی؟ کسی آدمی نے معروف کرہی کی غیبت میں کوئی بات کہی تو آپ نے اس سے فرمایا اس روئی کو یاد کر جب وہ آپ کی آنکھوں پر رکھی جائے گی, یعنی موت اور قبر کی یاد. تو جب موت یاد ہوتی ہے تو اعمال کا محاسبہ آسان ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے شروع کہاں سے کریں؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سارا گھر ہی گندا ہے, صفائی کہاں سے شروع کروں؟ تو اب سوال ہے کہ نفس کو کہاں سے سیدھا کروں؟ تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے سب سے پہلے فرائض پر محاسبہ کریں. یہ ساری ترتیب آپ ان لوگوں کو بھی دیں گے جو بھی دین کی طرف آنے والے ہیں, نئے نئے لوگ ہیں, بچے, ینگسٹرز, یا قرآن کی کلاسز میں نئے آنے والے لوگ. شروع کے دنوں کا جو ڈسکشن ہوتا ہے نا کلاسز کا, وہ بھی اسی تھیم پہ چلتا ہے. ان کو تسلی دے, شروع کے پانچ پاروں میں صرف اللہ کی محبت اور عبادات میں فرائض کی بات کرنی چاہیے, پھر بعد میں نفل اور بڑی بڑی قربانیوں کی بات کرے. تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے فرائض, اگر اس میں کمی ہو تو اس کو دور کرے, اس کی قضا دے یا اصلاح کرے. سیکنڈ نمبر پہ کیا آئے گا؟ منہیات. کوئی غلط کام کر رہے ہیں, اللہ کی حرام کردہ چیز ہے, کوئی گناہ ہے, تو توبہ اور استغفار سے اس کو دور کریں, اور گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں سر انجام دیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے غفلت. غفلت پر محاسبہ کریں, اگر اس سے کسی غفلت کا ارتکاب ہو گیا ہو تو ذکر اور اللہ کی طرف رجوع سے اس کا ازالہ کریں. چوتھی چیز گفتگو. اس کا بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ کوئی ہینڈ آؤٹ بنائیں, بہت کام کی چیزیں ہیں. بلکہ اس بک میں تو میرا لئے سینکڑوں کے اعتبار سے آپ کو جیمز مل گئے ہیں. اگر آپ اس کے بورڈ بناتے نا تو سارے بورڈ بھر جائیں. چوتھی چیز کے گفتگو پر محاسبہ کریں, جس کام کی طرف قدم چل کر گئے اس کا محاسبہ, یا جس کام کی طرف ہاتھ بڑھا یا کانوں نے جو سنا اس کا محاسبہ کرے کہ میں کیا چاہتا تھا, میں نے یہ کام کیوں کیا, کس وجہ سے کیا, اور اس بات کا علم رکھے کہ ہر کال اور فعل دو رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے. ایک رجسٹر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کس کی خوشنودی کے لیے کیا, اور دوسرے میں یہ لکھا جاتا ہے کیسے کیا. سمجھ آئی؟ پہلے میں ہماری نیتیں لکھی جاتی ہیں اور دوسرے میں ہمارے عمل لکھے جاتے ہیں. پہلے سوال کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے اور دوسرے کا اتباع کے ساتھ ہے کہ رسول کی سنت کے مطابق اتنا تھا. عملی طریقے بھی امام ابن قیم نے دیے. انہوں نے محاسبے کا ابتدائی طریقہ کار اور کچھ چیزیں, مثلاً وہی بات جو بھی کہی ہے اسی کو پوائنٹس میں دیکھ لیں. فرائض پر محاسبہ, شریعت میں واجبات پر عمل کرنا محرمات کو ترک کرنے سے اولا, یعنی کوئی گناہ چھوڑ دے لیکن فرض نہ پڑھے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. نمازیں پڑھتے رہیں, گناہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں لیکن نمازیں شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو کسی کی توبہ کا پہلا طریقہ نماز شروع کرائیں, کیونکہ واجبات ہی اصل میں مقصود ہے. تو پہلے اس میں کمی ہے تو پورا کریں, नवाफिल कसरत से पढ़ें, फ़र्ज़ अगर ज़ाया हो गए तो दोहराएं, कमी रह गई है तो नवाफिल के साथ पूरी कराएं। दूसरी चीज़, हराम करदा और मना करदा चीज़ों पे मुहासबा होगा, और वो क्या कि इसके बाद इस्लाह की कोशिश करें। मसलन सूद की कोई हराम कमाई से माल कमाया तो उससे जान छुड़ाएं, किसी का हक मारा है तो उसको वापस करें, किसी की गीबत की है या किसी को हकीर जाना है या कमतर जाना है तो माफ़ी तलब करें, उसके लिए दुआ करें, उसकी तरफ से सदका करें। और अगर कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि जिसका इजाला मुमकिन नहीं, मसलन किसी ने शराब पी ली थी, किसी औरत की तरफ देखा, या इस तरह का कोई गुनाह हो, तो अब क्या करें? नदामत, शर्मिंदगी, तौबा और दोबारा गुनाह न करने का इरादा, और इसके साथ साथ फिर कसरत से गुनाहों को धो डालने वाले आमाल करें। सूरत हूद 114 में बड़ी प्यारी अल्लाह ने खुशखबरी दी कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। फिर तीसरी चीज़ है मकासद से गफलत पर मुहासबा, यानी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं समझे, गफलत की ज़िंदगी गुजर रही है, तो फिर क्या करें? खेल कूद को पीछे करें, फिल्में ड्रामे गाने छोड़ें, जिक्र इबादत आमाल शुरू करें, और गफलत के बदले में नेक आमाल। चौथा मुहासबा आज़ा का है, अपने हाथ पाँव से पूछिए क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, और फिर इन अज़ा को अल्लाह की इताअत में मशगूल कर लें, इंशाल्लाह वो कफ़ारा बनेगी। और पांचवी चीज़, नियतों का मुहासबा, तो नियत ठीक ना हो तो उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि दिल बहुत फिसलने वाली चीज़ है, इसीलिए इसको कल्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये उलटती पलटती है। मुहासबे की एक सूरत जो हमारे असलाफ में बहुत थी, अब ये अमली मिसालें आखिरी समझे जान है इस पूरे कोर्स की, इसको बस दिल से पढ़ लें हर चीज़ से बेनियाज होकर, तो इंशाल्लाह मुझे और आपको अपने हाल की काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। पहली चीज़ है नफ्स को सजा देना। देखिए, इस्लाम नफ्स खुशी नहीं पसंद करता, मतलब खुदकुशी नहीं पसंदीदा, लेकिन नफ्स को टेम करना है। जब इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करता है तो देखता है कि उसका नफ्स किसी गुनाह में मुबतला है, यानी फजाइल में किसी सुस्ती या काहली का शिकार है, तो वो अपने नफ्स को सजा दे। इसको कहते हैं तादीब नफ्स, लिख लें, तादीब अदब वाला ही है, बस ता अलिफ हमजा डाल के दाल जा बा डाल दें। तादीब नफ्स कहते हैं नफ्स को अदब सिखाना। इंसान इसी सूरत में सिराते मुस्तकीम पर रहता है कि वो कोशिश करे, मुहासबे नफ्स करे और नफ्स को सजा दे। किस कदर ताज्जुब की बात है कि अपने खानदान और नौकरों को तो बुरे अखलाक और कोताहियों पर सजा देता है, लेकिन अपने नफ्स से होने वाले बुरे अमाल पर इसे कोई सजा नहीं देता। हालांकि अपने नफ्स को सजा देना ज्यादा लायक और ऊला है। बच्चों को सजा देते हैं आप छोटी छोटी बातों पे, तो खुद को देते हैं? अकूबात, अकूबत कहते हैं सजा को। अकूबात यानी सजा के लफ्ज में मकसूद ये है कि इंसान अपने नफ्स पर इताअत के काम और ऐसे अमाल लाजिम करे जिससे पहले नहीं करता था। यानी अब ये नहीं कि सजा में खुद को उल्टा लटका दें, कोई ऐसा काम लें जिसमें नेकी हो। मसलन कुछ मिसालें देखिएगा, हजरत उमर की एक दफ़ा सिर की नमाज जमात से रह गई, तो आपने अपने नफ्स को ये सजा दी कि क़िता ज़मीन सदका की जिसकी मालियत 2 लाख दिरहम थी। बताइए ज़रा अगली असर कज़ा होगी? बंदा आधा घंटा पहले बैठा होगा कि दूसरा क़िता भी ना चला जाए। हमारा नफ्स कितना लाडला है। जब अब्दुल्ला बिन उमर की नमाज जमात से, और ये देखिए जमात से गई है, ये नहीं कि वक्त से चली गई, अब्दुल्ला बिन उमर की नमाज जमात से जाती रही तो वो तमाम रात जाग कर गुजारते। किस लिए? कफारा। उमर बिन अब्दुल अजीज की नमाज मगरिब की 2 सितारे तुलू होने तक लेट हो गई, यानी अंधेरा से छाया और 2 सितारे दिखने लगे, तो आपने 2 गुलाम आज़ाद किए, हालांकि अभी नमाज का वक्त नहीं निकला था, यानी ख़त्म नहीं हुआ था। ज़रा बताइए, जो मर्द जमात से पढ़ते ही नहीं है उनका क्या बनेगा? जो कहते हैं ज़रूरत ही कोई नहीं पढ़ने की, घर पढ़ लें भी तो बड़ी नसीब वाले पढ़ते। मैं सोचती हूँ कि आप इस आईने में ज़रा आज उम्मत का हाल देखें तो आपको सारी बातें लिखी हुई दिखेंगी आज ग्लोब के ऊपर। और ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से अपने बेटों और भाइयों और शौहरों से शेयर कीजिए, किताब खोल के समझ के पढ़ा दें। आप कहेंगे ना, वो कहेंगे आराम से बैठो, बस अच्छा सा माहौल बनाकर अच्छे तरीके से बात सामने रख दें। और इब्ने अबी रबिया की फजर की दो सुन्नतें फौत हो गईं, तो उन्होंने एक गुलाम आजाद किया। अल्लाह हमें इनका अति कर दे। इब्ने औन रहमहुल्लाह को आपकी वालदा ने आवाज़ दी, आपने जवाब दिया तो इनकी आवाज़ वालदा की आवाज़ से बुलंद हो गई, तो उन्होंने दो गुलाम आज़ाद किए। आज बच्चे शाउट करते हैं, चिंगाड़ते हैं, बादलों की तरह चीखते हैं। क्या पता चला कि हमारे असलाफ सज़ा ऐसी नहीं देते थे कि जिसमें खुद को मारने लग जाएं या बिजली के झटके लगाएं, सज़ा देकर नेकियां ज़्यादा कराते थे ताकि अमल साले हों और जिक्र अजकार ज़्यादा हों। तो मुहासबे नफ्स में मददगार चीज़ों में एक चीज़ क्या है? ऐसी बातों पर गौर व फिक्र करना जो किल्लत अमल के बावजूद बहुत ज़्यादा अजर का सबब बने। मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने 10 आयतों से क्याम किया वो गाफिलों में शुमार नहीं होगा। ये नमाज नफी में भी हदीस पूरी मौजूद है। और जो 100 आयतों से क्याम करे वो कानितीन यानी आबिदीन में लिखे जाएगा, और जो 1000 आयतों से क्याम करे वो क्या कहलाएगा? मुकंतरीन। किंतार किसको कहते हैं? खजाने को। मुकंतरा ज़हबी मिन असफ़ल, आयत 14 में आता है सूरह आल इमरान में। बे इंतहा सवाब जमा करने वालों में लिखा जाता है। तो जब ऐसी हदीसों पे हम गौर करेंगे ना, तो हमें बाकी अपने वक्त के ज़ाया होने पर अफसोस होगा। जिसने जिस्म की राहत के लिए अजर को ज़ाया किया, यकीनन वो अपने नफ्स पर नेक अमाल को लाजिम करेगा। एक और चीज़, और आखिरी चीज़ है वो इस टॉपिक की, नफ्स के मुहाफ़ज़े में मददगार चीज़ों में एक चीज़, असलाफ के हालात ज़िंदगी पढ़ना। किस तरह वो खुद को सजा देते थे और इनकी इबादत कैसी थी, उनमें से चंद चीज़ें देखते हैं। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, एक दिन मैं सुबह सुबह हज़रत आयशा के पास हाजिर हुआ, इनको सलाम किया। जब मैं हाजिर हुआ तो वो चाश्त की नमाज अदा कर रही थी। कब होती है? जब सूरज खुल जाता है, यानी 8-9 बजे। और ये आयत तिलावत कर रही थी, फमन अल्लाह अलैना बवका ना अजाब समूब, सूरत तूर की आयत नंबर 27 है। फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें जहरीली लू के अजाब से बचा लिया। और वो रो रही थी, दुआ कर रही थी और बार बार आयत को दोहरा रही थी। मैं खड़ा हुआ, यहाँ तक कि खड़ा खड़ा थक गया, और आप इसी हालत में रही। जब मैंने ये देखा तो बाजार चला गया और सोचा कि अपनी ज़रूरत पूरी करके वापस आता हूँ। चुनाचे मैंने अपनी ज़रूरत पूरी की, वापस आया तो हज़रत आयशा अभी तक इसी हालत में थी। आप बार बार इस आयत को दोहराती थी, रोती थी और दुआ करती थी। उनको समझ आता था ना, हमें अपने अंदर ये रूहानियत लाने की बहुत ज़रूरत है, तभी हमारी बात दूसरे भी मानेंगे। अबू दर्दा कहते हैं, अगर 3 चीज़ें ना होती तो मुझे एक दिन भी ज़िंदा रहना पसंद नहीं था। पहले ज़रा आज की ज़ुबान में समझिए वो 3 चीज़ें क्या होंगी? सेलफोन, ऑटोमेटिक गाड़ी और बेहतरीन खाना। इनकी पसंद देखिएगा कितनी अछूती थी। क्या 3 चीज़ें? सख्त गर्मी की दोपहर में अल्लाह के लिए प्यासा रहना, निसफ रात को सजदे करना, और इन लोगों की मजलिस जो बेहतरीन कलाम का इंतखाब करके बोलते हैं, जिस तरह बेहतरीन फल का इंतखाब किया जाता है। क्या कदर थी लोगों के पास बेहतरीन मजलिसों की उस दौर में? 3 सेकंड ज़रा गौर करें, इसमें कौन सी चीज़ मुझे पसंद है? सख्त गर्मी में प्यासा रहना चाहती हूँ, आधी रात को उठ के सजदे करती हूँ, और ऐसी मजलिसें जो बेहतरीन कलाम, और सबसे बेहतरीन कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम है। क्या वो मुझे अपनी जान से प्यारे? हज़रत मसरूक की बीवी फरमाती हैं कि मसरूक को जब भी देखा जाए, नमाज लंबी करने की वजह से इनकी टांगें सूजी रहती हैं। अल्लाह की कसम, अगर मैं इसके पीछे बैठूं तो इस पर तरस खाकर रोती ही रहूं। आप जानते हैं अपने बच्चों, शोहरों, बेटों की हालत, यानी उनकी इस कसम पुरसी को देख के मैं रोती रहूं कि इनकी टांगें क्यों इतनी सूजी हैं। आज हम मर्दों की काम से आए हुओं की टांगे तो सूजी देखें, पता नहीं नमाज भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। उमर अभी अपने बेटे के बहुत ज़्यादा रोने और रात को जागने की वजह से इस पर बहुत शफकत करती थी। वालदा ने पूछा है, बेटे शायद तू किसी को कत्ल कर बैठा है, यानी उस गुनाह में रो रहा है। रबी ने जवाब दिया, हाँ अम्मी जान, यानी मेरे से कत्ल हो गया। पूछा कि वो मकतूल कौन है, ताकि हम इसके अहले खाना के पास जाएं और वो आपको माफ़ कर दें, यानी आपका ये गिल्ट दूर हो। अल्लाह की कसम, अगर इन्हें आपके रोने और रातों को जागने का इल्म हो जाए तो वो ज़रूर आप पर रहम खाएंगे, यानी इतना आप रोते हैं तो वो तो वाकई तर्स खा के आपको माफ़ कर देंगे। तो हज़रत रबी ने जवाब दिया कि अम्मी जान, मकतूल तो मेरा नफ्स है, अपने नफ्स पे रो रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के लोग थे। अब इस पाकीज़ा और तैयब नफ्स लवामा और इनकार करने वाले जालिम और काफिर नफ्स के दरमियान फ़र्क देखें। जिसने अपने इबादत में कोशिश करने वाले बेटे को नसीहत करते हुए कहा, मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि ज़्यादा इबादत मत करो, इसके बेटे ने पूछा कि क्यों? तो इसने जवाब दिया, क्योंकि मुमकिन है कि रोज़े कियामत कोई चीज़ ना हो। यानी काफिर बाप जैसे भी होते हैं कि तू क्या अपनी जान हलकान कर रहा, शायद क़यामत हो ही ना तो ऐसी मुश्किल में पड़ गए। अब सवाल पैदा होता है कि किस हद तक नफ्स को सजा दें हम, क्या मार दें खुद को? तो मुसलमान इंसान को क्या चाहिए कि वह अपने नफ्स को ऐसे रास्ते पर चलाए जिसे निजात की तरफ ले आए, तो नफ्स पर मेहनत करे, इससे अलहदगी इख्तियार करके दुश्मनी पर उतर आए, यहाँ तक कि जब वो थक जाए और इसका असल काम इसके सुपुर्द हो जाए और वह आसूदा और खुशहाल हो जाए। नफ्स का कंट्रोल मुसलसल और लगातार मेहनत से मुमकिन है, यानी नफ्स ठीक हो जाए तो फिर छोड़ दे, आदत न बना दे। जब इसे देखे कि वो मुतमईन है तो इसे नसीहत करे और अल्लाह का खौफ दिलाए, और जब देखे कि वो मायूस हो रहा है तो इसे उम्मीद की नसीहत करे और अल्लाह की उम्मीद दिलाए। नफ्स इस बात का भी मुख्ताज होता है कि इंसान उसे बुरुमीद रखे और उसे सवाब की याद दहानी करवाता रहे, ताकि इसके लिए नेक अमाल को अंजाम देना आसान रहे। दोनों तरह ही ना, कभी मायूसियाँ भी तो दिल में आने ही लगती हैं ना। इमाम इब्ने जाज़ी फरमाते हैं, मैं दो आदमियों के पास से गुजरा जो बोझ उठाए जा रहे थे। वो एक दूसरे के शेरों का जवाब दे रहे थे, एक दूसरे की बात को गौर से सुनता, फिर इसे दोहराता या इसी तरह का कोई जवाब देता, फिर दूसरा भी इसी तरह करता। जब मैंने देखा कि अगर वो इस तरह ना करते तो इनकी मशक्क़त ज़्यादा हो जाती और वज़न बोझल होता, और ऐसा करने से इनका बोझ हल्का हो गया। जब मैंने इसके सबब पर गौर किया तो पता चला, सब अपनी तवज्जो को दूसरे इंसान की बातों में मशगूल रखना और अपनी इस फिक्र को इसका जवाब देने में मशगूल करना था, चुनाचे रास्ता कट गया और वो बोझ को भूल गए। समझे, यानी काम करते हुए शेर व शायरी हो रही थी तो बोझ महसूस नहीं हुआ। मुझे उससे एक नुक्ते की बात समझ आई और मैंने देखा कि इंसान मुश्किल मामलात की अंजाम दही से तकलीफ महसूस करता है। इस तरह नफ्स को बदलना भी मुश्किल काम, और पसंदीदा चीज़ से नफ्स को रोकना और नापसंदीदा फेल सर अंजाम देना भी तकलीफ दे अमर होता है। मैंने देखा, सब्र का रास्ता तसल्ली से कटता है और नफ्स के लिए नरमी के रवैये से कटता है। मतलब ये कि अपने नफ्स को बातों में लगाए रखें ताकि वक्त जो है वो गुजरता जाए। हज़रत अबू बकर किस तरह अपने नफ्स का मुहासबा करते थे? हज़रत आयशा से रिवायत है, कहती है, मेरे वालिद कसम उठाया करते थे कि मुझे लोगों में से उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से ज़्यादा कोई शख्स महबूब नहीं। हालांकि आपको तो इनकी तबीयतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन अल्लाह के लिए ये मोहब्बत थी ना। हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे वालिद दोबारा मुखातिब हुए और फरमाया, बेटी मैंने कैसे कहा था? उन्होंने कहा कि मुझे लोगों में से उमर से ज़्यादा महबूब कोई शख्स नहीं। फरमाया, ज़्यादा इज्जत वाला। यानी देखिए कैसे उन्होंने कलमा बोलने के बाद अपने नफ्स का मुहासबा किया, फिर उन्होंने गौर किया और इसे दूसरे कलमे से बदल दिया, क्योंकि इनकी राय में वो कलमा ज़्यादा दकीक और ज़्यादा सच्चाई पर मबनी था। यानी पहली दफ़ा इज्जत वाला नहीं कह सके ना, तो अब इसमें इज्जत वाला बोल दिया, यानी अपने मुंह के बोले बोले एक एक लफ्ज़ को तोलते थे। फिर हज़रत उमर का भी तकवा देख लीजिए। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं एक दिन हज़रत उमर के साथ निकला, यहाँ तक कि गड़े में दाखिल हुए। मैंने इनको ये कहते हुए सुना, मेरे और इनके दरमियान दीवार थी, वो गढ़े के दरमियान में थे। क्या कह रहे हैं? उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन, वाह वाह, अल्लाह की कसम, तुझे अल्लाह से डरना चाहिए या वो तुझे अजाब देगा। انہوں نے اپنے نفس کو اس لیے امیر المومنین کے نام سے مخاطب کیا تاکہ ان کے نفس کو یہ یاد دہانی ہو جائے کہ امیر المومنین کا لفظ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کرے گا. تو بڑے بڑے ٹائٹلز کے ساتھ دھوکہ نہ کھائیں, اللہ نے وہ ٹائٹل لے کے نہیں پکارنا آپ کو مجھے.